انسان مرکب ہے تین چیزوں کا، یہ جسم رکھتا ہے، بدھی رکھتا ہے اور آتما رکھتا ہے. جسم کے لحاظ سے ہم لوگوں نے کافی ترقی کی ہے، ڈاکٹری لحاظ سے، ویدک لحاظ سے، یونانی لحاظ سے، ایسی اور سائنس سے جس کا تعلق جسم سے ہے، اس کے سوشل حالات سے، گھروں کی سماجک اور پولیٹیکل، بدھی کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے کافی ترقی کی ہے. آسمانوں پر اڑنا سیکھا ہے، سمندروں کو چیر کر پار جانا سیکھا ہے، اور انیکوں ہی نئی نئی ایجادیں کی ہیں جس کو عقل دیکھ کر کبھی لوگ یہ کہتے تھے شاید یہ معجزے ہیں، مگر نہیں، قانون قدرت کے مطابق ہیں ایسے قانون جو ابھی تک ہماری نظر سے اوجھل تھے. ہم آتما بھی رکھتے ہیں. دو پہلوؤں کے لحاظ سے تو ہم نے کافی کچھ ترقی کی ہے اور کر رہے ہیں. آتما کے لحاظ سے جو ہماری ویری سیلف ہے، جس کے آدھار پر جسم اور بدھی دونوں چل رہے ہیں، اس کے متعلق وی ڈو لٹل آف نتھنگ پریکٹیکلی. تھیوری کے لحاظ سے تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، مگر پریکٹیکلی اس کے متعلق ہمیں تقریباً نہ کے برابر تجربہ. انسان کا آدرش مکمل انسان بننا ہے. کرائسٹ نے کہا بی جی پرفیکٹ ایز دائی فادر از ان ہیون. تم پورن بنا جس طرح کہ تمہارا پتا آسمانوں میں ہے. یہی کبیر صاحب کو سوال کیا گیا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کئی مثالیں دے دے کر سمجھایا. پہلے بتلایا کہ روڑا ہو رو بات کا تج من کا ابھیمان، تو رستے کا مٹی کا روڑا بن جا بھائی، سب ابھیمان کو چھوڑ دے. پھر کہتے ہیں اگر روڑا ہوا تو کیا ہوا، پنچھی کو دکھ دے. روڑا بھی بن گئے تو کیا یہ دکھ کا کارن بنتا ہے پنچھیوں کے لیے. پھر کہا اچھا بھائی یہ بھی آدرش ٹھیک نہیں، جو دھرنی میں تھے جیسے مٹی سڑک پر ہوتی ہے ایسے بن جاؤ. کہتے یہ بھی آدرش نقص کے بغیر نہیں، یہ اڑ اڑ لاگے آؤں گا، یہ اڑ کر کپڑوں پر منہ پر لگتی ہے. پھر اور مثال دی، کہتے اچھا چلو پانی جیسے بن جاؤ. کہتے یہ بھی تاتا سیتا ہو، یہ بھی ایک رس نہیں رہتا، کبھی گرم کبھی سرد. پھر یہ بھی ٹھیک نہیں، تو پھر فرمانے لگے بھائی ہری جن ہری جیسا چاہیے، ہری جن کو ہری جیسا ہی ہونا چاہیے. پرماتما نے انسان بنائے، انسان آتما دیر ہری کو کہتے ہیں. ہم سب آتما ہے، کانشیس اینٹیٹی ہے، چیتن سوروپ ہے، جو اس جسم کو چلا رہے ہیں. جب تک وہ کانشیس اینٹیٹی کہو چیتن سوروپ جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہے، اس جسم کی دنیا آباد ہے. جب وہ ساتھی اس سے نکل پڑتا ہے، ایک وقت ایسا ہر ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کے مکان کے جو مکین ہے نا وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے. یہاں دنیا میں ایویکشن آرڈر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سامان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے اگر مکین نہ نکلے تو. ایسے ہی جب اس نیچرل لا کہو پرماتما کے حصول کے مطابق جب اس جسم سے خالی ہونے کا وقت آتا ہے، سب کو جسم کو خالی کرنا پڑتا ہے. وہ ایک ایسا دن ہے جو سب پر آنا ہے. یہ منوش جیون ہم کو بڑا اتم جیون ملا ہے، اس کو ساری کریشن میں ٹاپ موسٹ جونی کہا گیا. اس میں سب سے بڑا آدرش अपने आप को जानना है और अपने आप को जानकर उस परमात्मा का अनुभव करना है। परमात्मा का अनुभव है या नहीं, ये सवाल आम दुनिया के सामने है। हम तुमसे अगर कोई इंसान पूछता है कि अरे भाई परमात्मा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मौसम वक्त पर आते हैं, सूरज वक्त पर चढ़ता है और ऐसे ही फरमाते हैं ये घड़ी है, घड़ी के बनाने वाला कोई है, वो 12 घंटे 24 घंटे हफ्ता हफ्ता चलती रहती है। एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस वो नतीजा एहसास करते हैं कि सारी सृष्टि का कोई करता है, या जो विद्वान पुरुष है वो कहते हैं हाँ भाई फलाना वेद ये कहता है, फलाना शास्त्र ये कहता है, फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना ये मुनि कहता है, कोटेशंस देते हैं। हाँ भाई जिन लोगों की कोटेशन हम देते हैं वो ठीक है, उन्होंने देखा और बयान किया, हमने अभी देखा नहीं। जिसको देखा नहीं उसका यकीन कैसे हो, यही एक सवाल था जो स्वामी विवेकानंद को बम्बे की प्रेसिडेंसी में लोगों को चैलेंज करने पर मजबूर किया, कोई है जिसने परमात्मा देखा है। उस वक्त स्वामी राम और कृष्ण परमहंस कलकत्ते में थे, वो अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी पुरुष आप देखेंगे वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो अडंबर महंत बनकर आगे पीछे बहुत सारा जो रेटिट्यूड लेकर नहीं चलते, वो लाइक्स समझते हैं कि हम इंसान हैं भाई, सब ही इंसान हैं। इंसान के अंदर हर एक पॉसिबिलिटी मौजूद है, जिसने जिस जिस पहलू को डेवलप कर लिया उसमें वो माहिर हो गया। तो वो गए उनके पास, एक कुर्ता पहने हुए थे, धोती बांधी हुई थी, सिर नंगे थे, चल रहे थे, जाकर पूछा मास्टर हैव यू सीन गॉड, ऐ महात्मा क्या तुमने परमात्मा को देखा है। फरमाने लगे यस माई चाइल्ड आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ इससे भी ज्यादा सफाई के साथ अनुभवी पुरुष की आंख के सामने सिर नीचा हो गया और सारी उम्र जहां कहीं भी गए हमेशा यही लफ्ज उनके जबान पर रहे, बट फॉर दैट गॉड मैन आई वॉज सेव्ड। अगर वो महापुरुष मुझे न मिलता मैं दुनिया में बह रहा था। हर एक इंसान के अंतर एक चेतन स्वरूप उसकी अपनी सेल्फ है, जिसके मुतलक जानना पहला काम है। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज, क्योंकि परमात्मा का अनुभव न बुद्धि ने करना है, न इंद्रियों ने करना है, न प्राणों ने करना है, न मन ने करना। परमात्मा का अनुभव आत्मा ने करना है, जो हमारी वेरी सेल्फ है। इसीलिए जब से दुनिया बनी सबसे पहला मुख उपदेश जो अपने सामने रखा गया वो यही था, अपने आप को जानो। क्राइस्ट ने भी यही फरमाया नो दाई सेल्फ, गुरु नानक साहब जी ने भी यही फरमाया कहो नानक बिन आपाची ने मिटे न भ्रम की काय। ए नानक जब तक हम अपने आप को चीनते नहीं, क्या अपने आप का एनालिसिस करके आत्म अनुभव को नहीं पाते, ये जो भ्रम बना हुआ ये मिट नहीं सकता। भ्रम किसको कहते हैं, जो असल में चीज किसी और रंग में हो और हमें किसी और रंग में नजर आए। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, हर रोज हमारा ये तजुर्बा है कि ऐसा जिस 5-6 फुट का जो हम लिए फिर रहे हैं, ये एक दिन आता है, इससे इसकी चलाने वाली शक्ति चली जाती है, ये चार निशाने चित हो जाता है, चार भाई उठाकर इसको शमशान भूमि में अपने हाथों से दाग दे आते हैं या कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं। dust, the out, and unto dust return. ये हशर है पांच छह फुट पुतले का जो हम सब लिए कर रहे हैं. इंसान के दो पहलू हैं, एक ऑब्जेक्टिव साइड है, दूसरी सब्जेक्टिव है. एक आउटर मैन कहिए, एक इनर मैन कहिए. आउटर मैन के मुतालिक हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने इस तरफ काफी तरक्की की है और कर रहे हैं. इनर मैन को जानना हमारा आदर्श है और फिर उसका ओवर सेल्फ जो है उसको पाना, ये जिंदगी का सबसे हाईएस्ट मिशन है. परमात्मा ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आत्मा देहधारी बनाए, आत्मा प्रभु की अंश है, ये कॉन्शियस एंटिटी है, परमात्मा कॉन्शियसनेस का एक समुद्र है, जाते हक का ये कतरा है, ये कतरा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप और जगत का रूप बना बैठा. इतना ये जिस्म के साथ आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये अपने आप को भूल चुका, ये भी अब वो तमीज नहीं कर सकता, ये मैं पांच छह फुट का पुतला हूं या इसके चलाने वाले कोई और शक्ति हूं. अगर छोटे बच्चे को कहो, उसको अभी थोड़ी कॉन्शियसनेस है, उसे पूछो अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ हो, वो आंखें फाड़ता है, मुंह खोलता है, उसे कुछ एहसास अभी बाकी है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिस्म का इतना रूप बन जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि अपने आप का भी तमीज करने का ख्याल भी नहीं रहता. जब कोई किसी से पूछे अरे भाई तुम कौन हो, वो कहते मैं रामनाथ हूं, मैं राम सिंह हूं, मैं मोहम्मद गनी हूं, मैं मिस्टर जोसेफ हूं. तो मेरे अर्ज करने का मतलब सिर्फ ये था, इंसानी मिशन क्या है, अपने आप को जानो, हु यू आर, व्हाट यू आर. जब उसको जानोगे फिर क्वेश्चन ओवर सेल्फ पैराइज होगा. कितने लोग हैं दुनिया में जो सचमुच आस्तिक हैं. हमारी आस्तिकता सिर्फ सुनी सुनाई पर बेस्ड है. या ग्रंथों पोथियों में पढ़ा, गुरु नानक साहब से सवाल किया गया परमात्मा है, तो फरमाने लगे नानक का पातशाह दिसे जाया. देखिए नजर आ रहा, उनकी वो अंतर की आंख खुली है जिसे वो नजर आता है. नानक से अखियां बेन जिन दिसिंद्रो माफे, ए नानक वो आंखें और हैं जिसे वो मालिक नजर आता है. यही क्राइस्ट से जब सवाल किया गया तो उसने भी यही जवाब दिया, फरमाया बिहोल्ड द लॉर्ड नो रीजन. यही रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, हाँ बच्चा मैं तुझे देख रहा हूं, उसको देख रहा हूं जैसे मैं तुझे देख रहा हूं. हमारे तुम्हारे से जब सवाल होता है वही जवाब हम देते हैं. आज मैटर ऑफ इंसन नतीजा खर्च करते हैं, फलाना वेद ये कहता है, फलाना ग्रंथ ये कहता है, फलानी पोथी ये कहती है. सवाल तो यह है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद योर सेल्फ इन गॉड. जब तक हमको अपना सेल्फ नॉलेज नहीं होगा, ओवर सेल्फ का नॉलेज नहीं हो सकता. इसलिए सब ऋषियों मुनियों महात्माओं ने यह आदर्श हमारे सामने रखा, क्या अपने आप को जानो. ओल्ड रोमन डेज में एक हमेशा हर साल एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जिसमें खास एक हेड चुना जाता था, उस एक दरबार लगता था, उसमें बड़े बड़े लोग जाते थे, हर एक किस्म का सवाल लेकर उसका उनको जवाब दिया जाता था. जेविया एक मिशनरी था क्रिश्चियन, वहां गया, दरबार लग रहा था, जाकर सवाल किया, क्या व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड लूज हिज वर्ल्ड ओन सोल. क्या हुआ अगर तुम सारी दुनिया के मालिक बन गए, जिस्म जिस्मानी तो उसके तलकात में बड़े माहिर हो गए, अगर आपने अपनी वेरी सेल्फ को नहीं पहचाना. अंत समय आता है जब जिस्म को छोड़ना पड़ता, वो छोड़ने वाली शक्ति हम हैं, उसको जानना फिर ओवर सेल्फ का सवाल आता है। तो आत्मकता सच्चे मानों में केवल उन्हीं पुरुषों के पास कहीं जा सकती है जिन्होंने उसको देखा। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपका आस्तिक हूं, वेदों ग्रंथों शास्त्रों में उन ऋषि मुनियों महात्माओं ने उस ओवर सेल्फ का अनुभव किया, फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, और उसके पाने के लिए पहला जो सवाल पेश किया वो अपने आप के जानना था, नो दाई सेल्फ। तो इंसान का सबसे बड़ा मिशन आत्ममंडल है और परमात्ममंडल है। इसके लिए इंसान थ्राइस ब्लेसिड है, ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, आत्मा रखता है। हमको डेवलप करना चाहिए तीनों पहलुओं से। अगर सिर्फ एक पहलू या दो पहलू से डेवलप हो गए हैं तो वी आर एम्पुटेटेड मैन। जब तक तीनों पहलू जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि चल रहे हैं उसके मतलब हम कुछ नहीं जानते तो हमारा मनुष्य जीवन निष्फल चला जाता। इनते जुमला इल्महा इनस्तोई तादोदानी मन के हम दरियाओं में दी। इलम की इलत गाई क्या है कि इंसान जाने कि मैं कौन। कीमते हर काल मैदानी की चीस्त कीमते खुदा मैदानी इब्लिस्त। तुम्हारे इल्म के मुतलक बहुत कुछ जानते हो, अगर अपने आप के मुतलक कुछ नहीं जानते तो कहते तुम बेवकूफ हो। बात असल में ये क्यों कही गई, क्योंकि एक समय जिंदगी में आता है जिसको हम ग्रेट फाइनल चेंज कहते हैं या लक्स माउथ से याद करते हैं। वो फेट हर एक के सामने आनी है, उसको हम माउथ या डेथ कहते हैं। माउथ कोई बगवेयर नहीं है, मगर एक चेंज है जो अवश्य सब पर आनी है। अगर इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हम जिंदगी में हल कर लें कि वो कौन सी शक्ति है जो इस जिस्म को चला रही है और उसको हम एट विल इसे ट्रांसेंड कर सकते हैं या नहीं, सवाल है। सेंट प्लूटार्क कहता है कि जो मिस्ट्रीज ऑफ बियॉन्ड में निषेध किए जाते हैं उनकी आत्मा ऐसे ही जिस्म को छोड़ते वक्त तजुर्बात करती है जैसे अनसमय रूप इनको छोड़ती हुई करती है। तो सेल्फ एनालिसिस कहो, अपने आप का जानना कहो, सेल्फ नॉलेज कहो, ये पहला स्टेप है उस हाईएस्ट मिशन को हासिल करने के लिए जो इंसान का ऊंचे से ऊंचा आदर्श है। इंसानों और हैवानों में फर्क क्या है, इनके लिए सब एक जैसे हालात हैं। हैवानों के बाल बच्चे हैं, इंसानों के भी हैं। वो मोहमाया में भूल रहे हैं, उनके अंतर गुस्सा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है। अरे भाई, इंसानों के अंतर भी वही चीजें हैं। इंसान में आकाश तत्व प्रबल है, इसलिए इसमें वो वैकुदी डिस्क्रिमिनेशन ये रखता है। इसमें वो शक्ति है जिससे ये सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता, सत को ग्रहण करके असत से मुंह मोड़ सकता। यही वेद भगवान ने कहा, हे परमात्मा हमको असत से सत की तरफ ले चलो, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। तो इस जिस्म रूपी मकान में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें कौन सी चीज लास्टिंग है और कौन सी चीज लास्टिंग नहीं, आप देख रहे हैं, हमारी आंखें गवाह हैं कि ये जिस कोई वक्त ऐसा आता है और सब पर आता है, नो एक्सेप्शन टू द रूल। राणा राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वाली वारी आपो अपनी कोई न माने रही, न राजा रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे, जो आए सब गए और हमने भी जाना। अरे भाई, वो जाने वाला कौन है? इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करो। महात्मा बुद्ध का पहला जीवन से आप हम सबक ले सकते हैं। शहर शहर को गए, शहर में बड़ी लेबाइशें की गई कि बादशाह का लड़का शहर को आ रहा है, हर तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह से कोई ऐसा नजारा उसकी आंखों के सामने न गुजरे जिससे कि उसका दिल मगमूग हो। गए तो देखा एक बूढ़ा आदमी था, उसकी हड्डियां निकल रही थी चेहरे की, बड़ा दुबला पतला था। पूछा ये क्या? कि महाराज ये जिस्म दुर्बल हो जाता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है, दिल को चोट आई। आगे गए एक आदमी बहुत सख्त बीमार था, हांक रहा था, उसका सांस नहीं निकलता था। तो पूछा ये क्या है? कि महाराज इंसान ये जिस्म है ये बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता और चोट आई। आगे गए एक मुर्दे को चार भाई लिए जा रहे थे। पूछा ये क्या है भाई? कि महाराज ये जिस्म छोड़ना पड़ता। जिंदा है भाई, ऐसा सुंदर जिस्म, ऐसी काया, उसका आखिर ये हशर। अरे इसमें वो कौन सी चीज है जो है और इससे निकल जाती है? ये दिल में बड़ी भारी चोट आई। घर में कहते उस दिन उसके यहां लड़का पैदा हुआ था, वो भी उसको खुशी ना नजर आई उस नजारे के सामने जो आंखों से देख कर आया था। घर जंगलों की राह ली, फिर आखिर बोझ को पाया है। तो मेरे याद करने का मतलब यह है कि जब तक मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुहिमा हमारा हल नहीं होता, अरे देश में चलाने वाली शक्ति कौन है, उसका अनुभव फर्स्ट हैंड नहीं करता है। थ्योरी से तो हम बहुत कुछ कहते हैं, मैं तन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मगर प्रैक्टिकली कभी उसने अपने आप को पृथ्वी ऊपर लाने का फर्स्ट हैंड तजुर्बा नहीं किया। ये सेल्फ एनालिसिस, जिस्म से ट्रांसेंड करना कहो, जीते जी मरना कहो, ये एक मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करने का सवाल है जो सबके सामने है। आखिर एक दिन जिंदगी में आना है, जिस दिन इस जिस्म को छोड़ जाना। अरे भाई उस छोड़ने से पहले हमने इस बात का अगर हमें जिंदगी में तजुर्बा हो जाए तो मौत का खौफ न रहे। गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, मरने से सब जग डरे, जीविया लड़े सबको, कि मरने से सारा जहां भयभीत हो रहा, सारा जहां ये कहता दो सांस में और ले लो। कहते हैं गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बुझे को। अगर कोई अनुभवी पुरुष जिसने इसका फर्स्ट हैंड खुद तजुर्बा किया है और दूसरों को इस तजुर्बा देने के समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, अगर आपको सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड तजुर्बा दे दे और उसको फिर एटविल अभ्यास से बार बार करने से आप इस जिस्म से ऊपर आ सके तो मौत का खौफ न रहे। मौत के समय भी तो जिस्म रूह जिस्म को छोड़ती है। तो ये नई साइंस नहीं, ओल्ड से ओल्ड है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सुरत सैल आसमान की लग पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। सो हमारी आत्मा आसमानों की सफर कर सकती है, जिस्म को एट विल छोड़ सकती है, किन की? कहते संतों की। संत किसी खास भेद का नाम नहीं भाई, ना पीले सफेद नीले कपड़े पहनने का नाम संत है। संत उस हस्ती का नाम है जिसके अंतर वो परमात्मा अनुभव हो चुका हूं। ही इज द माउथ पीस ऑफ गॉड, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में लालो। ऐ लालो मैं वो कुछ बयान करता हूं जो अंतर से अपने आप आ रहा है, वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता। ही इज द माउथ पीस ऑफ गॉड, जैसे अंतर से चला आता है अनुभव वो बयान करता चला जाता है, और बयान करते हुए भी उसको इस बात का अनुभव नहीं है कि मैंने आगे क्या कहना। एमर्सन ने कहा कि जो ख्याल आप बगैर सोचे समझे के हमारे अंतर में आते रहते हैं, देर ऑलवेज परफेक्ट। और लेक्चरार और एक अनुभवी पुरुष के बयान में इसीलिए बड़ा भारी फर्क है। वो अपना फर्स्ट हैंड से बयान करता है एक्सपीरियंस से, और दूसरा इल्मी शहादतों से। कबीर साहब के पास एक पंडित जी गए, उन्होंने कायदे की बात है जो आलमों से इल्म तो पेश करना है ठीक है, मगर जब तक उसी का फर्स्ट एंड तजुर्बा न हो तो आलम और अनुभवी के बयान में बड़ा भारी फर्क होगा। सुन संतन की साथी साथी सो बोले जो पेखे आके, संतों की सच्ची शहादत को सुनो, वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और आलिम लोग जो बयान करेंगे वो बयान वो कुछ करेंगे जो उन्होंने किताबों में देखा सुना पढ़ा। बड़ा भारी फर्क है, एक देखकर बयान कर रहा है इसमें शक नहीं। एजुकेशन इसी का नाम नहीं कि फैक्ट्स को आपने दबाव मर्चेंडाइज की तरह भर लो, बल्कि लिव अप टू देम। वो चीज जिसका आपने इजहार हो रहा है तुम्हारी बुद्धि उसको सोच समझ रही है, उसके देखने वाले भी बनो। एक आदमी है परमात्मा को देखा, यही मैं अर्ज कर रहा था, वो कहता है नानक का पातशाह दिसे राजा, और जो आलम है कहा फलाना वेद ये कहता है, फलाना ग्रंथ ये कहता है, फलाना ऋषि ये कहता है। अरे भाई वो ठीक कहते, वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा सो जो न बेचारे। अगर वही ग्रंथ और पोथे वो जो उन महात्मा अनुभवी पुरुषों के रिकॉर्ड है हमारे पास, बड़े बेश कीमत हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, अगर उनको किसी आलम के जरिए सुनोगे तो वो आपको बुद्धि के घाट पर उसकी बहुत तफसीरें कर करके सुनाएगा, मगर कई ऐसी जगह आ जाएंगी जहां पर वो मुंह के बल गिर जाएगी। आमिल जिसने देखा है उसी साइंस का मायर है, आत्म अनुभव कहो, आत्म तत्व का बोध कहो, सेल्फ नॉलेज कहो, गॉड नॉलेज कहो, जैसे करके देखा है, जब उनको ग्रंथों पोथियों का फायदा है करके सुनाओगे या उससे सुनोगे, वो उस चीज को जिसका उन महापुरुषों ने जिक्र किया है उसको करके देखा है, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पाना, तो बड़ा भारी फर्क है। तो इसलिए उन्होंने उनको कहा, देख भाई तेरा मेरा मनुआ कैसे हुक होई रे, तेरा और मेरा मन कैसे मुतफिक हो सकता है, मैं कहता हूँ आंख देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अरे भाई तू कागजों में जो पढ़ा है वो बयान कर रहा है, मैं आंखों से देखकर बयान कर रहा हूँ। फिर कहते हैं मैं कहता सुलझाऊ नहारी, तू रहता और जाही रे, कहते मैं जो कुछ बयान करता हूँ मैंने देखा है, मैं खोल खोल कर समझाता हूँ, लोगों की जो गुंजले हैं वो खुलती चली जाती है। अरे भाई तेरा अपना कुफर नहीं टूटा, दूसरों को ज्ञान ध्यान तो सुनाता है मगर वो और गुंजलों में पड़ जाते हैं। तो अनुभवी पुरुष और आलिम पुरुष इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है। एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर तुम्हारे सामने रखा था रखेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास शायद केशव चंद्र सेन जी गए, उनको कहा देखो भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, अगर बहुत बातों से समझना है तो विवेकानंद के पास चले जाओ। तो हमारी इज्जत गाई जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन क्या है, परमात्म अनुभव है। परमात्म अनुभव के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम आपने आप का जानना है, सेल्फ नॉलेज है। तो इसलिए खुद शिनासी खुदा शिनासी है। सब महात्मा इस पर मुतफिक हैं क्योंकि सौ से आने एक ही मत, ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जिसको सब ने हल करना है। जिन्होंने हल कर लिया वो खुशकिस्मत इंसान, जिन्होंने अभी हल नहीं किया इसी बुलेखे में जा रहे हैं, उनको जब इस पिंड को छोड़ना पड़ेगा उस वक्त बहुत मुश्किल होगी। और अब भी एंगल ऑफ विजन उनका बड़ा डिसेप्टिव है। मैं आपको अर्ज करूंगा एक मिसाल देकर, एक दरिया है वो बह रहा, उसमें एक बेड़ी जा रही है, उसमें चार पांच आदमी बैठे हैं, वो भी बेड़ी के साथ उस तरफ जा रही है, बेड़ी जिस तरफ पानी जा रहा है, उसमें से एक आदमी बेड़ी से बाहर खड़ा हो जाता, वो क्या देखता है बेड़ी बह रही है और बेड़ी के सवार भी बह रहे हैं, वो पुकारता है भाइयों हमदर्दी करता है, भाइयों तुम दुनिया में बह रहे हो, वो कहते हैं अरे भाई पानी भी खड़ा है हम भी खड़े हैं तुम क्या कहते हो, क्योंकि दो चीजें जब एक ही रफ्तार से जा रही हो तो मालूम होता है खड़ी, पता कब लगता है जब दो तीन एक घंटे के बाद जैसे चार मील नीचे आ गए। तो यही हालत हमारी है, हम जिस्म रखते हैं जिस्म मैटर का बना हुआ है, जगत सारे ही मैटर का बना हुआ, इसमें अगर कोई चीज हमेशा रहने वाली है वो इसको चेतन जीवंत करने वाली चीज है, वो आत्मा है, वो लास्टिंग है। बाकी जिस्म बदल रहा है, इसके जरे जरे भी बदल रहे हैं, जगत के जरे जरे भी बदल रहे हैं, हम क्योंकि जिस्म की बेड़ी का आइडेंटिफाई हो चुके हैं इसलिए दोनों क्योंकि एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, हमें ये स्थिर बहाते हैं कि न भारी धोखा। आलम भी इसी धोखे में जा रहे हैं, बेलम भी इसी में जा रहे हैं। यही एक चीज है जिसको सबने पढ़े और अनपढ़ दोनों ने ही हल करना, इल्म की जरूरत है। रीजनिंग इज द हेल्प एंड रीजनिंग द बॉस, उपनिषद क्या कहते हैं। हमारा आदर्श आत्म अनुभव और परमात्म अनुभव है। आत्म अनुभव के लिए कहा गया इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। आत्मनिर्भर कब होता है? जब बुद्धि भी स्थिर हो। तो बुद्धि की स्थिरता, इंद्रियों और मन की स्थिरता और जिस्म की स्थिरता, ये सबसे जरूरी। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, कभी सा करवाते हैं सुरत निरत थिर हो, कहे कबीर इस पलक को कल्प न भावे को। ये है आदर्श, किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। हमारा आदर्श दो पहलुओं से, एक बाहरी एक अंतरी। ऑब्जेक्टिव साइड से हमने बहुत कुछ तरक्की की है, मुबारक है, और दिनों दिन बढ़ो। मगर इसके साथ साथ जब तक दूसरा पहलू मुकम्मल नहीं होता, इंसान एम्पूटेटेड इंसान है, दुनिया में भी दुखी रहता है और मरकर भी दुखी रहता है। नानक दुखिया सब संसार है, नानक सारा जहां ही दुखी है। किसी से जाकर पूछो, अगर आप अपने दुख का बयान करोगे अपनी गठरी खोल कर रख देगा, मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूं। कोई इंसान दुनिया में सुखी है सही तो फरमाते हैं कौन सुखी है, नानक सुखिया दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम पावर के साथ लग गया, उसकी आत्मा का आधार बन गया, वो ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। हम दुनिया में क्यों दुखी हैं? सेंट अगस्टिन कहता है कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी हम उनको भोग रहे, और जिसका हमने भोग लेना था उसका पता ही नहीं। जिस इल्म बाहरी सिलसिले जितने भी हैं ये सारे हमारे बरतने के लिए थी, मीन्स टू दी एंड थे, ये हम इसी का रूप बन गए, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बने बैठे हैं, इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हो रहे हैं, इससे बीजान हमें कुछ नजर ही नहीं आता। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो, यही हमारा आदर्श। ए जग मिठा अगे के लिए मिठा, और क्या इससे परे की जिंदगी नहीं है? है तो सही। एक हम फील करते हैं अनसमझ, जब आता फिर पूछो क्या हसर होता। एक लड़का एक था नास्तिक, उसकी डेथ आ गई। एक बच्चा था नया नया पढ़ने वाला, वो गया वहां लिखा था गॉड इज नो वेयर, उन्होंने कहा जी ओ डी गॉड एन ओ डब्ल्यू नाउ आई एस इज एच ई आर ई हियर गॉड इज नाउ हियर। कह रहे हाँ बच्चा मैं देख रहा हूं कोई शक्ति है। अरे भाई जब अनसर में जाकर होश आए, कब कभी राम की अंश, हम उस मालिक की अंश है, चेतन स्वरूप है, कई कभी सही नर जागा जब यम का नडमूड में लगे, ये मोह और माया के अंतर भूल में जा रहा है, अटैचमेंट में जा रहा है, ये समझता ये सारा सामान हमेशा रहेगा। अरे भाई न किसी का रहा न रह सकता, या ये हमको छोड़ जाएंगे या हम इनको छोड़ जाएंगे। जब उस वक्त होश आएगी सवाय इसके कि दो आंसू बहाए पछताए और चल दे, और क्या हो सकता है। तो इंसान का आदर्श सेल्फ नॉलेज, गॉड नॉलेज असल है। सेल्फ नॉलेज उसके लिए पहला स्टेप है। सेल्फ नॉलेज के लिए जीव का नेक पाक सदाचार होना पहला स्टेप है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन आत्मानुभव के लिए पहला कदम है, पहला जीना है। तो इसके सिवा जब तक इसको नहीं पाएंगे उस तरफ कामयाब नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए हमें खास FSC और BSc का इम्तहान देना पड़ता है। किसी समाज में आप रहो, गॉड मेड मैन एंड मैन मेड रिलीजन्स। इंसान सोशल है, परमात्मा ने इंसान बनाया और इंसानों ने समाजें बनाई। समाजों की भी जरूरत है, नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाए। खास खास कानून बनाए, उसके मुताबिक इंसान जीवन बसर करे ताकि सदाचारी और नेक पाक बने, इंसान इंसान के काम आए। ये पहला कदम है जो निहायत जरूरी है। समाजें, शरीयतें दाया का काम करती हैं। शरीयत सारी दाई है, हकीकत सारी माई है। तो शरीयत किसी समाज में रहकर आप अपने सदाचारी और नेक पाक बनकर परमात्मा अनुभव के लिए सेल्फ एनालिसिस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके जिसने इस गति को पा लिया उसका मनोजीवन सफल हो गया। अरे भाई, अगर आप किसी भाई का ये ख्याल है कि वो एक समाज में रहकर ये दूसरी ही की खाली शक्ल या रहनी को धारण करके उसकी गति हो जाती है, ये भाई 16वें झूठ मीन्स टू दी एंड है। क्राइस्ट को ये सवाल पेश किया गया, यहां का बादशाह हमसे फिराद मांगता है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त का जो सिक्का था कहा वो ले आओ। जब लाए तो कहा इस पर किसकी मोर है, कहने लगे बादशाह की। तो फरमाया गिव अनटु सीजर्स व्हाट इज सीजर्स, जिस पर खुदा पर बादशाह की मोर है वो बादशाह के हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोर है उसके हवाले कर दो। तो आत्मा चेतन स्वरूप है, मैं यही अर्ज कर रहा था। इसके पाने के लिए पहला कदम सदाचारी और नेक पाक होना है। जैसे डॉक्टरी साइंस पढ़ने के लिए आप किसी समाज में हो उसके लिए एलिजिबल हो अगर आप FSC और BSc का इम्तहान पास कर लो। जब वहां जाओगे वहां किस से पढ़ते हो, जो डॉक्टरी जिस्मानी साइंस में माहिर हैं वो सिंह हो, दास हो, राम हो, खान हो या जोसेफ या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। पढ़ते हुए भी पढ़कर भी आप अपनी समाज ही में रहते हो। इसी तरह आगे आत्मविद्या या आत्म तत्व का बोध कहो, सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज कहो, खुद शनासी या खुदा शनासी कहो, ये हमारा वाहिद मजबूत है जो सब समाजों के सामने एक जैसा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है और वो क्या है, परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है और परमात्मा के पाने का जरिया भी प्रेम है। हम ये कहते हैं कि परमात्मा हमारा परम पिता है। अरे भाई, ये सब हम उसके बच्चे हैं। जो परमात्मा से तो प्रेम करते हैं उसे बच्चों से प्रेम नहीं करते। उनका कोई हक नहीं है कि वो परमात्मा को अपना पिता कहे। लव ऑफ गॉड इज लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज लव ऑफ गॉड। सेंट जॉन थे, बूढ़े हो गए, उनको एक कॉलेज और स्कूल में ले जाया गया कि आप कुछ उपदेश दें। बूढ़े थे, फिर उठाया, कहा बॉय लव वन अनदर, बच्चो आपस में प्रेम करो। फिर सिर उठाया, फिर यही कहा बॉय लव वन अनदर। तीसरी बार फिर उठाया और कहा कि बॉय लव वन अनदर। चुप कर रहे, जो सेक्रेटरी इंचार्ज थे वो पूछने लगे आए महात्मा तुझे और कुछ नहीं करना, तो कहने लगे बस इससे ज्यादा मेरे पास और कोई उपदेश नहीं। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू प्रेम करो और सब दर्द करो तुम्हारे पास आ जाएंगे। प्रेम ही गॉड इज लव, मैंने कहा आत्मा भी प्रेम की अंश है, ये भी प्रेम स्वरूप है, इसका खासा है कहीं न कहीं लग करे न। ईश्वर की जिस्म के साथ लगी पड़ी है, जिस्मानी तालुकात के साथ लगी पड़ी है, बाल बच्चों के साथ, जायदादों के साथ, अरे ये चीजें एक दिन हमने छोड़ जानी है या ये हमको छोड़ जाएंगे, तो हमारी आत्मा का सच्चा प्रेम किसी ऐसी चीज से लग जाना चाहिए जो पनाह से रहत हो, और वो कौन है? वो परमात्मा। जो नगरी आवे सांसुबो इनके मिलिए प्रबद मैसितो, जो नजर आ रहा है इससे हमारी अटैचमेंट है। हे परमात्मा तुम अब नाशी हो, ये नाशवान चीजें हैं, फिर हम आपको कैसे मिल सकते हैं ऐसी हालत में? वो परमात्मा सब ऋषि मुनि महात्मा कहा है उन्होंने, उन्हें जो शास्त्र ग्रंथ पोथियों को पढ़ो कि परमात्मा है या नहीं, सब ने कहा है, महात्माओं ने कहा हमने देखा, अरे भाई हम आम लोगों ने नहीं देखा।
और तीर्थों तक जाते रहे या गुरु साहब के चंदों को आए थे, आत्मा देह को बाया है तो फरमाते हैं हम नहीं थे महदारी, हम भाई आपकी तरह कभी इंडियो के घाट पर थे, आज तुम कभी के स्वाम है, इकरार कर रहे हैं। जब से गुरमत गुरु पाए किसी हर भाई कुछ की हदायत लेकर नजर लेकर मुझे उस दिन से हम आत्मा नहीं को पा चुके हैं। अरे वही परमात्मा का पढ़ना सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज, यह हर एक विद्वान के लिए उसके हक में है। राजा उसी चतुरा और बापन न ही किसी को भावन को हर राजा, वो किसी बाप का मोह लिया हुआ नहीं है, जो कि भाव भक्ति से कोई याद कर लिया वो उसी का। तो अब सब ने तुम बस उत्तर दिया है, अरे भाई मैं जा सीखा एक इंसान को, हर एक इंसान और महात्मा में फर्क क्या? महात्मा ने पूरे इंसान बनाती है, पहले उसे दयाल किया और इंसान एक से दो पहले अख्तियार किए हैं, तीसरे से अभी बिल्कुल दूर जा रहा रबू के सुनने। हर एक इंसान को वो गति मिल सकती है। हाँ ये होता है कि बैकग्राउंड किसी की ज्यादा है किसी की कम है, जिसकी ज्यादा उसकी छोटी उम्र में ही अवेकनिंग होती। मैं जब नौवीं जमात में पढ़ा करता था तो एक मिशनरी आया, सवाल किया तुम किसे कृपा कर रहे हो, तो क्लास में स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे युवा पहुंचना अध्यक्ष पेश किया, किसी ने कहा मेरे तहसीलदार बनना है, किसी ने कहा मेरे वकील, किसी ने जज, जब मेरी बार ही आए तो मैंने कहा यही नॉन थैंक का पूजन लिख दिया था इसी पर। अरे वही हमारा दिन जी का आदर्श नॉलेज है, नॉलेज ऑफ दी सेल्फ नॉलेज ऑफ दी ओवर सेल्फ, वो सेल्फ को तभी पता होगा जब सेल्फ की कुछ खबर होगी। सेल्फ ने ही ओवर सेल्फ का अनुभव करना है, ठीक है कोई अनुभव कुछ अब भी अगर आपको मिलेगा इसका आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकेगा। ये है डाइजिक फॉर्मैन, थोड़ा सा परमार्थ किसको कहते हैं, अंडरस्टैंड दू क्या सकता लाइफ गॉड डज इट क्लास जिंदगी के पूरे परमार्थ को जानो, वो क्या है? अगर तुम सारी दुनिया के लिए मालिक बन गए हैं और अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं है। गुरु जी का जो आदर्श था उसको हमने नहीं पाया, इसके लिए बाकी सारी इल्म है। दो गणित और मैं अंत कर दो, भारद्वाज ऋषि के पास एक गृहस्थ गए, उनका नाम सोने था, उसमें तो की दृष्टि और आज की दृष्टि में बड़ा भारी फर्क है। उसमें जो लोग जल के अंतिम पूर्व में क्या रखते हैं, जो निशासों का ज्ञाता है, कोई ग्रस्ताश्रम में आते थे, आज हमने महात्मा ने ग्रस्ताश्रम के बीच नकारों की मशीन समझ रखा है और गति में जा रहे हैं। जल के की रक्षा करना मुनिशान दुब हो रहा, ये एक ऐसी चीज है, अगर एक लैंप हो उसके नीचे तेल का सुराख हो, तेल बार बार जाएगा, लाइट किसकी बनेगी? तेल जल की रक्षा जिंदगी है और इसका पार करना मौत है। ये आखिरी इल्तिजा कहो, रिक्वेस्ट कहो, बड़े होने की हैसियत से अपने बच्चों को कहूं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो। जस्ट इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। हमारे जो ओल्ड भाई यहां बैठे हैं, उनको पता होगा जब हमारे वक्त बाल बच्चे बहन भाई पैदा होते थे तो पूछा करते थे ये कहां से आए, तो उनको कहा जाता था कि गाय दे गई थी। बात तो बड़ी बच्ची थी है, मगर हम मान लेते थे क्यों, इसलिए कि हमारे माता पिता के जीवन इतने पितृ थे कि कभी खाब के आदमी आता था क्या था क्या नहीं था। और आज हमारी क्या दुर्गति है, किरदार करने की जरूरत है। हमारे हजूर सवाल करते थे जो अपने बच्चों को नए पाप बनाना चाहते हैं उनको चाहिए खुद एक पाप बनाए, इंसान पाप ही करता है। तो ये थोड़े नर्सों में मैंने आपके सामने किसी भारत की बारी नहीं रखी टाइम के लिहाज से, कि तो वक्त एक घंटा था, मैं थोड़ा थोड़ा मजबूर तक किया है। ये मुझे महापुरुषों के चरणों में समझ आई। मैं ये समझता हूं कि हम सब भाई नीचे हैं, किसी खास के लिए खास प्रिवलेज नहीं, परमात्मा के चरणों से देखो किसी की बनावट एक जैसी है, अंतर की बनावट जिसमानी एक जैसी है। इंसान जिसम रखता है, बुद्धि रखता है और आत्मा रखता है, परमात्मा के कंसेप्शन से एक जैसे हैं। जिसने उनको डेवलप कर लिया पूरे इंसान बन गया, एंड जो परफेक्ट हो गया है वो परमात्मा की मरती बन गया। आप किसी समाज में हो, मुबारक हो, उसमें रहकर नए पाप और सदाचारी बनो, सत्य अहिंसा को धारण करो, अहिंसा परम धर्म, सत्य को धारण करो, जन चर की रक्षा, सबके अंतर परमात्मा है, सबके प्रेम और निष्काम सेवा, ये एक पहलू। और दूसरा पहलू सेल्फ एनालिसिस, आत्मन भय और परमात्मा को पुकारो, फिर ही आप मुकम्मल इंसान बन सकोगे। इन लक्ष्यों के साथ आप सबको मिलेगा। सब मेरा मन तो कोई बात न हो,
उसके बाद में
शब्द मेरा भाई
नाम जानूती बंदना दर्श दीवानी मेरी पागल प्री लिए मैंने धोलों के दीपक लिए संजो मेरी, मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जानी तू, नाम जानू आरती बंदन ना पूजा की है अनजाने दर्द दीवानी मेरी पागल प्री के दीपक ले संजो तेरी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, गगन मंडल पर सहज पिया किस दिदल लेना हो पर सेज हमारी किस विध तो ना हो तेरी मैं तो प्रेम दिवाली मेरा दर्द न जाने को दर्द की मारी बन बन दोनों वैद मिला ले को हो दर्द की मारी बन बन दोनों वैद मिला नहीं को मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जो वैद सवरिया तेरी मैं तो प्रभु की दीवानी मेरा दर्द न जाने को गुरु रविदास मिले जब पूरे धुर से कलम भिड़ी गुरु रविदास मिले जब पूरे धुर से कलम भिड़ी सत गुरु सहल दही मोहे ऐसी ज्योति में ज्योति
सबने आपकी बड़ी निंदा और बुराई की है शायद तो भाई मेरे तक नहीं पहुंची और उनको नाम बख्श दिया तो उनका प्यार सबसे होगा हजम पूछा थे उनके पास कहते हैं एक बार एक आदमी खाना खाने को आया खाना खाते ही है और ये कायदा है कि उस मालिक का शुक्राना किया जाता है उसने सिर्फ खाना शुरू कर दिया तो उनका नाम न लिया तो हजरत मूसा ने बराबर साहब से निकल जाओ यहाँ तो कहते हैं कि हजरत मूसा को वही रियायत उतनी है तो देख मूसा जिसको मैं खाना देता हूँ समझे तू उसे नफरत करता नास्तक है तो मेरा नास्तक है ना सर उसको खाना देता है राजो खाएगा नहीं क्यों तो अंतर जो श्री के खास जबड़ों में है अभी तंग दिन दायरों में है उनकी नजर यही रही है रहेगी जो इससे तबके से ऊपर आ जाते हैं उनकी नजर यकसा हो जाती है यक नजरी हो जाती है वहां दुश्मन और दोस्त मित्र ना मित्र कोई भी हो हर एक मैं उसी की ज्योति के लिहाज से वो दुनिया के साथ बढ़ते हैं तो ये चीज को देखना जो है ना इस चीज का अनुभव का जागना कहो इसी का नाम रिलीजन है या मन है परमात्मा गदगद में बस रहा कोई हिस्सा उससे खाली नहीं वो हमारी आंख बन जाए जिससे वो हर जाई हर एक गदगद में नजर आए इसके हल हो जाने का नाम सच्चा परमात्मा जो जो महात्मा है ये एलएस एक एक्सपेरिमेंट था जो उस सच्चाई के साथ सत्य के साथ किया गया जो जो महात्मा है उन्होंने किसी का इजहार किया जो उनको तजुर्बा अंतर सत्य से हुआ खुद से कहो मालिक से कहो जो ला तवय ला तबदल हस्ती है उसके साथ जो जो तजुर्बा उनका हुआ उन्होंने वो बयान किया सिर्फ जबानी जमा खर्च का सवाल नहीं यही दुनिया असलियत को समझने में कातिर हो जाती लोग तो सिर्फ बयान करते क्या जो ग्रंथों पोथियों में लिखा संत वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते सुन संतन की साची साखी सो बोले जो देखे आखे संतों की सच्ची शहादत को सुनो वो कुछ बयान करते हैं जो कुछ सुनो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं उन महात्माओं से जब आप सवाल करते हैं कि महाराज परमात्मा है तो वो क्या जवाब देते गुरु नानक साहब से ये पूछा गया तो उनसे उन्होंने क्या कहा नानक का पाठ्या जिसे जाहिर नजर आ रहा है देखो भाई यीशु मसीह साहब से यही सवाल किया गया था कि खुदा है कि बिहोल्ड लॉर्ड, वो नजर आ रहा है, देखो कहीं कोई रीजनिंग नहीं दे रहे, समझे। हम तुमसे कोई पूछे तो हम क्या कहते हैं, कोई पूछे सवाल करे परमात्मा है तो हम कहते हैं हाँ भाई सूरज वक्त पर चढ़ता है, मौसम वक्त पर आते हैं, हर एक चीज नियम से चल रही है, घड़ी के बनाने वाला कोई है, इसलिए एज ए मैटर ऑफ इंफ्लुएंस नतीजा अखिल करते हैं, कोई और ताकत है देखी नहीं, मैं जो देखते वो कहते हैं हम देख रहे हैं। कौन देखता है तो गुरुमुख देखा था, जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठ गया गुरुमुख हो गया, वो इसको दे अपनी आंखों से देखता। अरे ये बयान आता फैक्ट, अफसाने नहीं। यही विवेकानंद जी के मुतालिक जिक्र आता है, स्वामी विवेकानंद जी के मुतालिक, तो वो पहले पुरुष थे जो बम्बे प्रेसिडेंसी में लोगों को चैलेंज करते फिरते थे, इज देयर एनी गॉड, कोई है आदमी जिसने परमात्मा देखा। तो उस वक्त उन दिनों स्वामी पारे रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में थे, तो किसी ने कहा भाई जाओ उनके पास, ये पढ़े अनपढ़ का सवाल नहीं भाई, पढ़े अनपढ़ परमग्रस्त पर्व, वो इलम के लिहाज से आराधना नहीं थे, मगर अनुभवी थे, अनुभव का सवाल है भाई, कहीं से अनुभव जाग होते सही, जितना जितना जागे उतना सही, थोड़े तो अनुभवी गए उनके पास, वहां मामूली सी धोती बांधकर जाते, को महात्मा को बनावट नहीं बनाते, वो एवरेज गायन की तरह रहते हैं साधारण। आजकल तो महात्मा की यह है कि लंबा चोला पहन ले, कोट पहन ले, सीधी पगड़ी बांध ले या बाल रख ले, ये कर ले, कुछ शक्ल शिवाद महात्मा की बनाई जाती है, महात्मा जो अर्जुन जिन के अंतर से तले तो वो बनाओ से रहते हो जाते हैं, नेचुरल सादा जीवन सादा रहते, वो धोती बांधी है कुर्ता पहनी फिर रहे थे, चले भैया महात्मा जाकर सवाल करते हैं कि मास्टर हैव यू सीन गॉड, है महात्मा क्या तुमने प्रभु देखा है, उसकी तरफ देखा, कहने लगे हाँ बच्चा आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू, हाँ बच्चा मैंने उसको मैं देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, क्या कभी उससे भी सफाई के साथ अनुभवी पुरुष के वचन से भी क्या हो गया, सारी उम्र यही एक लफ्ज उसकी जबान पर रहा, जब कहीं व्यस्त में गए तो ये कहते थे बट फॉर दैट गॉड मैन आई वॉज सेव्ड, अगर वो महापुरुष मुझे ना मिलते मेरा जीवन बर्बाद चला गया था, निष्फल चला गया। जब हम तुमसे लोग पूछते हैं सवाल, हम लोग क्या करते हैं, या तो ये बातें करते हैं जो मैंने अर्ज की, नतीजा ऐसा करते हैं, या कहते हैं फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना महात्मा ये कहता है, फलानी ग्रंथ ये कहती है, फलानी पोथी ये कहती है, फलाना वेद और शास्त्र ये कहता है, हाँ भाई ठीक वो जो कहते हैं ठीक, अरे भाई तू बतला तुम क्या कहते हो, वट इज योर एक्सपीरियंस विद योर सेल्फ एंड गॉड, जब तक कोई चीज अपने संयोगों में नहीं आई तो फिर उसका ठंडक कहो शांति कहो तृप्ति कैसे आ सकती है, इसलिए आलमो अनुभवियों में हमेशा ही फर्क रहा, हमेशा ही फर्क रहा, आलम तो लिखी पड़ी बातें सुनाते हैं, जूठी पतले चाहते हैं कबीर साहब के लक्ष्य को साहब, और आमिल पुरुष जो है वो देख कर जाते, तो देख रहा उसके देखते हुए एक चीज देखती हुई कोई ध्यान करे उसमें ध्यान, और एक आदमी पढ़कर करे उसके दोनों के तर्जे ध्यान में पढ़ कर उसके वचन चले जाते, एक जगह है कश्मीर है पढ़ कर लो, दो चार आदमी वहां गए उन्होंने वहां के हालात लिखे प्यारे कश्मीर, वो किताबें जो पद्य है, और हर एक आदमी ने बयान करना मोटी मोटी बातें से मिलती है, डिटेल की बातें कहीं न कहीं, एक ज्यादा बयान कर जाएगा दूसरा कम कर जाएगा, हो सकता है तीसरा उसका जिक्र ही न करे, तो ये पढ़कर पढ़ने वाले के दिल में शक पैदा, बात क्या है तो समझ नहीं आ रहे। एक आदमी कश्मीर गया, वो देखा है सब जगह, जब उसको वो पोथियां सुना वो कहो इसका यह मतलब मैं देखा है, बड़ी बसूख के साथ कन्विक्शन के साथ प्रतीत के साथ वो बयान करते हैं, उसके लफ्जों में वजन है क्योंकि वो देख कर कह रहा हूं, तो ग्रंथों पोथियों को भी माफ करना हम पढ़ सकते हैं, मगर उसके राइट इम्पोर्ट को नहीं समझ सकेंगे सही मानों को उस वक्त तक जब तक तो वो चीज वो बात हम किसी उसके आमिल पुरुष से न सुने। ठाकुर जन सोचे क्या दिया क्या है उन ऋषियों मुनियों महात्माओं के तजुर्बे हैं जो उन्होंने अपनी आत्मा के साथ किया, सेल्फ के साथ किया और परमात्मा के साथ किया। कौन कौन सी चीजें उनकी मददगार हुई, कौन कौन सी चीजें उस रस्ते में रुकावट साबित हुई, इनका देखा उन महापुरुषों को क्या क्या तजुर्बे इनके थोड़े थोड़े ऐसा है ये उन्होंने किया। अब हम जो किताबें कोर्स करते हैं उसको आलम लोग सारी जगह नहीं समझ सकते, कई जगह ऐसी आ जाती है जहां पर इंसान मुंह के बल गिर जाता। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको, मैं जब नौकरी में था तो मेरे अंदर एक सुप्रिंटेंडेंट था ईसाई, वो रोमन कैथोलिक का लाइब्रेरियन था, उसके लिए मुझे ईसाइयत की बहुत सी खबर मिली, किताबें ग्रंथ से पूछने पर था। उसको मैंने कहा भाई तुम भी पदभाव से ये जाकर पूछो ये जो घंटा बज रहा है ना इसका मतलब क्या है। गए वो हिन्दुस्तान में जितने दिखे हुए सबसे एडवांस गिना जाता था, कहने लगा इट इज ओनली टू कॉल मैन टूगेदर, सिर्फ आदमी को इकट्ठा करने के लिए है। मैंने उसको कहा भाई ये मान लिया दो मिनट के लिए, तो मंदिरों में जो घंटा जाकर बजाता है वो ये घंटे की निशानी हर एक समाज की चेन चक्र में मौजूद है, पूजा पाठ में फिर गुरुद्वारों में जाओ घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ज्ञान मत बुद्ध मंदिरों में जाओ वहां घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं घंटी बजाते हैं। आखिर भाई इसका मतलब क्या, देखेंगे यहां आलम कहां गिरते हैं मुंह के बाद। तो अनुभवी पुरुषों की वाणी भी अगर आप किसी अनुभवी पुरुष से सुनेंगे तब तो सही माने उसके तुमको समझ आने लगेंगे, राइट इम्पोर्ट को समझ सकोगे, नहीं तो कई जगह ऐसी जगह आएगी तुम मुंह के बल गिर जाओ। ग्रंथों पोथियों को हम पढ़ सकते हैं मगर उसके राइट इम्पोर्ट को नहीं समझ सकते उस वक्त तक जब तक हम किसी आमिल पुरुष से न सुने। ये करनी का भेद है ना ही बुद्धि विचार, कथनी चार करनी करो तो कुछ पाओ था, ये प्रैक्टिकल मजमून है और प्रैक्टिकली रहा है और रहेगा। ये इनमें सीना है सफीना नहीं, ये परा विद्या है अपरा विद्या नहीं। बाहर के रस्म रवाज पूजा पाठ तीर्थ यात्रा ग्रंथों पोथियों का स्वाद है, पूजा पाठ ये वो रस्म रवाज जितने सब इसमें सब है, जितने इनमें इनसे सिर्फ तैयारी वर्ग है। प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड पेविंग द रोड, मगर इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण केवल आत्म तत्व के बोध से ही होगी, जिसकी हुई इसी से हुई, चेतन रूप विचारों अपने स्वामी जी महाराज करवाते और नाने बिना पाची नहीं मिटे न भ्रम की काय। जब तक हम अपने आप को चीनते नहीं, अपनी आत्मा को मन से आजाद करते, अपने आप का अनुभव और प्रभु का अनुभव नहीं करते, तब तक आना जाना इसका खत्म नहीं होता। तो महापुरुषों का हमेशा ही ऐसे पुरुषों का महापुरुषों का यही रहा है कि भाई सारी मनुष्य जाति एक है, एक रही है और एक रहेगी, सारे ही उस मालिक के कुंभ के मेंबर सभ्य सजीवाल सदायन कोई नद से बाहर आ गया। एक पिता एक उसके हम भारत तू मेरा गुराई ऑफ मैन इन फादर ऑफ गॉड, ये सबसे उनका पहला उपदेश है जो वो दिया करते हैं। वहां कौम मंदिर समाते नहीं, वहां आत्मा देहधारियों का सवाल है, वो सबको आत्मा देहधारियों की नजर से देखते हैं और सबसे उचित मानस मानते हुए उसी के पुजारी रहे। इन सब महात्माओं का निरोल तौहीद का मत रहा है, एक प्रभु का उसके सच्चे पुजारी रहे और ये बतलाते रहे कि हमने उसी को पाना, जिन्होंने पाया है उनकी सोबत में पाना, बस ये एक जरूरी बात। जिन्होंने देखा ही नहीं पाया ही नहीं वो तुमको क्या दिखाए। तो किसी महात्मा की वाणी लोग हैं वो उसी पर जोर देते हैं, वो किसी लक्ष्यों की जकड़ों में या बाहरी शक्लों की बनावट की जकड़ों में न रहे, اپنا کسی کو تلقین کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں رہو تو صحیح کہ میں نے سوچا مگر اس کی جکڑ میں اس کی درے دیوار کی جکڑ میں مر نہ جاؤ اتنے اونچے چڑھو کہ سارا مرس جاتی ہی تمہاری سماج بن جائے. گرو گرانتھ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ مہاراج سب سے اونچا مذہب کون سا, یوگیوں نے سوال کیا, یوگیوں میں ہائی پنتھی ہائی پنتھ سب سے اونچا, تو فرمانے لگے ہائی پنتھی سگڑ جماتی من جیتے جگی کہ سب سے اونچا مذہب کیا ہے کہ ہم سب ایک جماعت میں پڑھ رہے ہیں اور سب اسی کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں نا بھائی. اپنا ودیا اس لیے بنائی گئی کہ اسے نیک پاک اور سداچاری بنے, پانا تو غرض وہی تھا نا کہ اپنے آپ کو جانو اور تم کو جانو, سیلف نالج اینڈ گاڈ نالج, سب اسے یہی اپدیش دیا نو دائی سیلف اپنے آپ کو جانو. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک شانتی نہیں ہوگی. تو سب مہاتماؤں کا ایک ہی مت رہا سچے مانے, ایک صراط المستقیم سیدھا رستہ, دوسرا نفس کا رستہ. یہ مسلمان فقیروں نے اس کو اس طرح بیان کیا, ایک گروموکھ کا رستہ ایک منموکھ کا رستہ, یہ سنتوں نے بیان کیا, ایک مومن دوسرا کافر, ایک شرے مارگ ایک تیرے مارگ, دو ہی مارگ ہیں. مجھے سنتوں کا مارگ ہمیشہ ہی صراط المستقیم, گرو سکھی کہو مومنتا کہو شرے مارگ کہو, اس طرح اس میں کسی مذہب کا اختلاف نہ رہا نہ ہے نہ ہو سکتا. اٹ از ون فار آل, آتم تتو کا بودھ سب کے لیے ایک جیسا مضمون رہا ہے اور رہے گا, جیسے داستانی مضمون ہے کسی سماج میں رہو سب کے لیے ایک جیسا مضمون ہے. اس کی کوالیفکیشن یہ ہے کہ وہ FSC یا BSC پاس کر لے تو کالج میں جا سکتا, ایسے ہی اس طرف پڑھ کر بھی وہ وہاں پڑھتے ہوئے کن سے پڑھتا جو اس کے باہر ہیں, خواہ کسی سماج کے سماج کا سوال نہیں, پڑھتے ہوئے پڑھ کر ڈاکٹر بن جانے پر بھی وہ اپنی اپنی سماج میں رہتے ہیں. اسی طرح سن مہاتما کہتے تم کسی سماج میں رہو, مین سوشل ہونے کے سبب سے یہ مل جل کر رہنے والا ہے, اس لیے کسی نہ کسی سماج میں رہے, اگر نہیں رہے گا تو کوئی نئی بنانی پڑے گی اس کو, اس لیے یہ بہتر ہے کہ جس میں وہ رہے رہ کر اس کے مطابق جیون نیک پاک اور سداچاری بنا لے, بنا کر پھر آتم تتو کا بوجھ کرے ان کی صحبت میں جو آتم تتو درشی ہے. سب ہاتھوں نے ایک اپدیش کیا تو فرماتے رہے کہ تعصب اور تنگ دلی کو دور کرو. جب تک ہم جکڑوں میں ہیں, تنگ دلی اور تعصب میں ہیں, بگٹری اور نیرو مائنڈیڈ ہم میں گھر کری پڑی ہے, ہم اصلیت کو نہیں دیکھ سکے. حافظ صاحب نے کہا حافظ تعصب دور کن از تعصب دور کن از دل اگر گھر وصلے خدا پائے, اگر تم پرماتما کا وصل چاہتے ہو ملنا چاہتے ہو دل سے تنگ دلی اور تعصب کو چھوڑ دو, کیوں کہ سب کے اندر پرماتما ذات کا عالم ہے ہی نہیں, جب تک ذات کا عالم ہے تب تک وہ کہاں, کوئی نیک ہے کوئی بد ہے, کسی سے نفرت ہے کسی سے دھڑے بندی ہے, ارے وہ سب کے اندر ہے. پرماتما کہتا ہے جو وہ مجھ سے پیار کرتا میں سب کے گھٹ میں ہوں تو کسی سے نفرت کیوں. بعض لوگ اپنے علم کے گمنڈ میں حکومت کے نشے میں روپئے کے زور میں دوسروں سے نفرت کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ارے بھائی وہ سب ہی آتما دے داری ہے, کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہے گدی پر بیٹھا کام کر رہا ہے, کوئی اوپر سے پراسی کا نوکروں کا کام کر رہا ہے, فرق تو صرف اپنے پرارمبھ کرموں کا ہے نا, ان کی ذات میں کیا فرق ہے, ذاتیت میں کوئی فرق نہیں. مہاتما جب کبھی بھی آئے اسی چیز کو دنیا کے اندر پیش کرتے رہے کہ ہم سب کا مالک ایک, اس کو خدا کہو رام کہو رحیم کہو گسائی کہو کچھ کہو وہ ایک ہے, سینکڑوں عاشق ہیں دل آرام سب کا ایک ہے, مگر مرد ملت تو جدا ہے مگر کام سب کا ہے. رجب نشانہ ایک ہے تیرندار انیک, سمجھے تیرندار تو بہت ہے نشانہ تو ایک ہے جس کو پانا, اور جس کو پانا ہے اس کی وہ ہمارا آدرش ہے, اسی کے ہم سب کو جاری ہیں. جب اس نشے کو اس رس کو ہم پا لیں تو پھر بلاک کا عالم کہاں رہتا, چار شرابیوں میں آپس میں کتنا پیار ہوتا, اگر چار شرابیوں میں آپس میں پیار ہو سکتا भाई चार एक मालिक के भक्तों में क्यों नहीं हो सकता, चार एक ही महापुरुष के नाम लेवाओं में आपस में प्यार क्यों नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा अभी प्यार मुकम्मल नहीं है, उसमें कुछ खामी बाकी है। मजनू था, उसको एक दिन लोगों ने देखा, पाए सद बो चीज मजनू खल्क गुस्सा की के बूद। एक दिन लोगों ने देखा कि मजनू एक कुत्ते के पांव की उम्र रहा है। खल्क ने पूछा, लोगों ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहा, चले ये गाहे गाहे बरसुए लगा रखता हूँ। कहते इस कुत्ते को मैंने अपनी प्यारी लैला की गली में कई बार जाते देखा, कितना प्यार। अरे भाई अगर मजनू लैला की प्यार के लिए कुत्ते के पांव चूम सकता है, अरे भाई हम एक ही आदर्श रखते हुए एक ही प्रभु के पुजारी एक ही महापुरुष के नाम लेवा चरणों में बैठने वालों का आपस में क्यों प्यार नहीं हो, उसका कारण हम उस महापुरुष के पूर्ण, उसका कारण यही हो सकता है कि हम उस महापुरुष के पूर्ण पर नहीं चले, जो तालीम उन्होंने दी उनको हमने सही मानों में नहीं समझा। तो सब महात्मों का यही आदर्श रहा हमेशा। अगर आप किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में जाओगे जो सबसे पहली बात आपके दिल दिमाग में बैठेगी वो यही होगी, जब ते साध संगत मोय पाही ना कोई दारी ना ही बिगाना सगल संग हमरी बनाए। ये पहला सबक है जो किसी महापुरुष के चरणों में बैठ कर हमको आता सिखाया जाता। अगर हम उसी महापुरुष के नाम ले हुआ होकर पशु वृत्ति को धारण कर ले तो फिर एक महापुरुष के नाम लेवा दूसरे महापुरुष ऊपर मिट्टी उड़ाता। कुत्ते की तरह अपने मालिक से तो प्यार है, दूसरे को भावता भावना विवेक से काम लो। महात्मा सब एक हैं, जो पूर्ण पुरुष हुए हैं, संत और संत में कोई फर्क नहीं है। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे होते हैं। जब कभी दुनिया में आए हैं सब जगत को रोशनी दे जाते हैं। सूर्य जब कहता है क्या वो हिंदुओं पर कहता है, मुसलमानों के लिए नहीं कहता, सबके लिए कहता। ऐसे जब ऐसे महापुरुष आते हैं उनका चिंतन करें, सारी समाज उनकी अपनी है। गुरु नानक साहब ने जब कहते हैं चोला छोड़ा है तो हिंदू मुसलमानों आपस में झगड़ा हो गया था, वो कह रहे थे ये हिंदू थे, वो कहते ये मुसलमान थे। ये कबीर साहब के भी वक्त हुआ, हमारे हजूर एक बार मुल्तान गए, पहले हिंदू मुस्लिम फसाद वहां हुआ था। जब ये वहां गए वहां देश लोगों ने सुना तो कहने लगे, महाराज अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम फसाद ना होता। तो ये महापुरुषों का यही तालीम हमेशा से रही है, जब हम उनके चरणों में जाते हैं तो इसी बात की है कि सबसे प्यार क्राइस्ट से। लोगों ने पूछा कि महाराज हमें लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो पूछा कि हजरत मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया, श्री कहते न वो तो कहते उन्होंने कहा टुथ फॉर टुथ एंड नेल फॉर नेल, जो तुमको दांतों से काटो उसको दांतों से काटिए, जो तुमको छुरा लगाए छुरा लगाओ। कहने बिकॉज ऑफ योर हार्ड हार्टेडनेस ही गेव यू दिस कमांडमेंट, तुम्हारे हृदय पत्थर की तरह सख्त थे इसलिए उन्होंने ये तुमको उपदेश दिया। चले आप क्या उपदेश देते हैं, तो कहने लगे मैं तो आपको कहूंगा लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, अपने नेबरों से पड़ोसियों से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। तो कहते फिर महाराज दुश्मनों के साथ क्या सुनी चाहिए, लव दाई एनिमीज, दुश्मनों में से भी प्यार करो। ये महात्माओं को हमेशा से उपदेश रहा। आपको पता है व्यास जी के पास एक दफा सवाल किया गया कि महाराज धर्म की हमको समझ नहीं आ रही कि धर्म किसको कहते, हमें आप ऐसी खोल कर समझाएं कि धर्म का जो तात्पर्य हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो कहने लगे भाई दूसरों के साथ ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, यही धर्म है। तो संत महात्मा आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, लव दाई नेबर्स एज दाई सेल्फ। हम एक ही के बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं। इख्तलाफ हम हमारे लोगों के पैदा किए हुए हैं, उन लोगों के जिनकी तंग नजरिया है, तंग दिल है, परमात्मा ने नहीं बनाया। तो अब इन महात्माओं का आदर्श क्या रहा? सबका आदर्श देख कि पूर्णता को पाओ, परफेक्शन को हासिल करो। बी जी परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। तुम पूर्ण बनो जैसा परमात्मा पूर्ण। परमात्मा में आप देखिए सब उसके बच्चे हैं, तुम्हारे दिल में सबके लिए प्यार हो। वो सबका राजा है, हर एक का भरा चितून करता है। तुम भी भाई सबके लिए भरा चितून करो। तो ये गुण है जो परमात्मा के अंतर मौजूद है, और हमको उसी को आदर्श सामने से और पूर्व पुरुष जो से एक हो गए कहो, जिनके अंतर उसकी झलक मौजूद है, उनमें भी यही गुण पाए जाते हैं। उनको आपको और नाहकों का सवाल नहीं, वो पूर्णता चाहते हैं। कबीर साहब ने मिसालें दे देकर समझाया है कि साधु को कैसा होना चाहिए। पहले फरमाते हैं, रोड़ा होरो बाट का तज मन का अभिमान। बदस्ते के रोड़े बन जाओ, सब अभिमान को छोड़ दो। फिर आप ही कहते हैं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को दुख दे। कहते वो भाई दुखदाई बन जाता पंछियों को मारने के लिए, ये भी ठीक आदर्श है। फिर कहते हैं, क्या जो धरनी में थे जैसे मिट्टी है ना बड़ी, ऐसे बन जाओ। फिर क्या नहीं भाई, ये भी आदर्श ठीक नहीं, वो दो दिन लागे अंदर, ये भी लोगों को कपड़ों को लगती, ये भी ठीक नहीं। फिर क्या कहा, कि पानी जैसा होना चाहिए। क्या लगे, ये भी आदर्श ठीक नहीं, वो ताता सीता हो, वो कभी गर्म होता कभी ठंडा होता। कहते महाराज से कैसा होना चाहिए? फरमाने लगे, हर जन हर ही जैसा चाहिए। तो परफेक्शन हर एक महात्मा का गोल है। वो देख रहे हैं कि हर एक के अंतर आत्मा है, आत्मा प्रभु की अंश है, ये जुज्व है, वो कुल है। जुज्व कुल के साथ मिलकर उसका रूप बन जाए, बाकी आदर्श हर एक महात्मा का रहा है। किसी समाज में वो आया, मैंने अभी अर्ज की थी, महात्मा उस सब का जो पराविद्या या आत्मवेता पुरुष रहे हैं, उन सब का एक ही मात्रा, दो न हुए न हो सकते। हाँ, अपराविद्या में है थोड़ा बहुत इख्तलाफ, रस्म रिवाज में आपको नजर आएगा, मगर वो भी इख्तलाफ खास सबब से होगा, मगर उनकी गर्ज वही है जो सबकी। एक मोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, सिख गुरुद्वारों में सिर ढांप कर बैठना अदब की निशानी, ईसाई गिरजों में सिर नंगे बैठना अदब की निशानी। अरे तो ज्यादा इख्तलाफ तो जरूर है, मगर घर दोनों की बात होकर बैठो। ऐसे ही अरब में पानी की कमी है, वहां उन्होंने कहा वजू करके नमाज पढ़ सकते हो। वजू क्या, हाथ पैर मुंह धो लो और नमाज पढ़ लो। कई जगह यहाँ भी किया, जहाँ बिल्कुल पानी न मिले वहां से यमुम कर लो। तो यमुम क्या, मिट्टी पर हाथ मलकर मुंह से पर मलकर बैठ जाओ। मतलब क्या, चेतन होकर बाहोश होकर तैयार होकर बैठो। हिन्दुस्तान में पानी आम है, यहाँ कहते हैं भाई जब तक नहा न लो परमार्थ कबूल नहीं। भाई इख्तलाफ रसूल मुल के आबो आते हैं ना, आप देखिए नजर मारकर परमात्मा की तरफ से तो एक जैसे हकूक सबको मिले। देखिए पहले बनावट के तो लो इंसान है, सबकी दो अंक है, दो कान दो नाक का मुंह गुदा इंद्री, दो बाजू दो पांव टांगे पेट छाती फिर दिल दिमाग, ये वो बैल की बनावट एक जैसी, और अंतर की भी कंस्ट्रक्शन एक जैसी। मेरा सबके है, फिफड़े हैं, दबाव है, बाकायदगी अंतर का भी एक जैसा। अच्छा, बाहर जो उतने हकूक है, हवा सबको एक जैसी मिल रही, धूप एक जैसी मिल रही, ऐसे ही अंतर की बनावट और बाहर की बनावट दोनों एक जैसे, ऐसे एक जैसे हकूक मिले हुए। अब देखिए, अब बुखार चढ़ता है, आप ये बताएं, हिंदू को और तरह चलता है या मुसलमानों को और तरह चलता है? एक जैसे चलता है नहीं, उसका इलाज भी एक ही जैसा। तो परमात्मा की तरफ से अंतर ने हर एक सिलसिला एक जैसा बयान किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं।
तो भाई हमने क्यों इख्तलाफ बनाए, बात ये हमारे बनाई हुई है ना, अपरा विद्या इसलिए बनाई गई थी बाहरी रस्म रिवाज सोशल बीइंग होने के सबब से कि खास खास कानून बनाए उसके मुताबिक ये जीवन बसर करे, नेक पाक और सदाचारी बने, इंसान इंसान के काम आए, दुनिया की यात्रा आराम से बतीत हो, एक गुड वर्ल्ड सिटीजन बन जाए, गर्ज यही हर एक समाज की। अगर अपरा विद्या के महात्मा भी सही मानो से प्रचार करें तो ये पाकिस्तान न बनता, ये गलत प्रचार का नतीजा। और जो आत्म तत्व का बोध है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ मजमून है, वो सबके लिए ही जैसा रहा है और रहेगा। अब इन समाजों से, इन बाहरी पर अपरा विद्या की कानून से हमने लेनी है मदद, और वो मदद क्या है कि तुम नेक पाक सदाचारी बनो, सत्य को धारण करो, अहिंसा परमो धर्म, किसी का बुरा चितवन न करो, मन करके भी वचन करके भी कर्म करके भी सत्य को धारण करो, समझे, नेक पाक जीवन बनाओ, ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो। तो सब महात्माओं का है कि जैसा आदर्श हमेशा से रहा, आप देखेंगे इन असूलों के साथ इख्तलाफ कहा, इख्तलाफ इंसान के पैदा करता है, प्रभु के बनाए नहीं, यही हाफिज साहब ने कहा है। यक हकीकत जलवा गए दर कुफ्र इस्लाम अस्त बस, एक हकीकत सब में जलवा गर हो रही है, काफरों के अंतर भी और मोमिनों के अंतर भी। फिर कहते इख्तलाफ आते मजा है जुमला अब हम अस्त बस, जिन्हें मजमों के इख्तलाफ हैं वो शक्ति वहमों पर बने। एक आदमी उठा, उसने एक ख्याल पैदा किया, 10-20 उसके गिरदा गिर बैठ गए, वो एक नया मत जारी कर दे। अगर हकीकत की नजर से रहे तो कोई झगड़ा नहीं, जब वो शक्ति एक खास खास कन्विक्शन प्रतीक पर्सनल जो होती है उस पर बैठ जाते हैं तो इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ, वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ। अरे भाई सच्चाई तो एक ही हो सकती है, दो नहीं। किसी सवाल का जवाब सही एक ही हो सकता है, ना दो हुए ना दो हो सकते। सच वही है जो पहले अर्ज की, बाकी इख्तलाफात कहते इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। कहते क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि एक क्लास दूसरे की क्लास के खिलाफ हो गई, तंगदिली और तसव बढ़ गया। तो आज का सब कहता है शेखो ब्राह्मण से जुदा, शेखो और ब्राह्मणों के प्याले अलग अलग हो गए, भाई भाई से जुदा हो रहा। अरे भाई जब आदर्श एक है, जरिया एक है, फिर इख्तलाफ का, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने रहीम कह दिया, किसी ने कहा नाम से मुक्ति है, किसी ने कहा कलमे से मुक्ति है, किसी कहा कि जिसके अंदर परमात्मा की ज्योति प्रगट हुई वही हिंदू है, वही सिख है, खालसा है, किसी ने कहा भाई जिसके अंदर खुदा का नूर प्रगट है वही मुसलमान है। फर्क कहा, फर्क तो हम लोगों की तंगदिली और तासबों के सबब से बन गए। क्या कहते हैं, वरना दर मैखाना यक साकी है यज्ञा मस्त बस, नहीं तो इस परमात्मा के जियाफत खाने में मैं खाने में कहो एक ही शराब नाम कलमे की शब्द की चल रही है और एक ही अनुभवी पुरुष खिलाने वाला। जब अनुभवी पुरुष होगा आपको यही तालीम देगा, आपको इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल बट टू डाई इन इट इज सिन। किसी समाज में पैदा हो ये पहला कर्म है, मगर इतने चढ़ जाओ कि सारी समाजें तुम्हारी अपनी बन जाए। समझे, एक बार मुझे याद है हजूर महर्षि जी से मिले लाहौर का वाक्य है, कोई जिक्र हुआ कि कोई कॉलेज स्कूल बना दिए जाए, तो हजूर फरमाने लगे कि जितने कॉलेज और स्कूल है ये सब हमारे अपने हैं, जो उनमें से इस चीज का मुतलाशी है वो हमारे पास आ जाता। सवाल तो नहीं, मेडिकल कॉलेज बना, जो डॉक्टरी पढ़ने के ख्वाहिशमंद में किसी समाज के वहां आ जाते। अरे भाई संतों का भी यही है, वो रूहानियत का उनका स्कूल है कॉलेज है, जो रूहानी पुरुष रूहानियत के दिलदादा हैं उसकी खोज और तलाश में वो उनके पास आ जाते हैं। कौमों मजमों यूं मुसलमानों का सवाल ही नहीं है रह गया। हमारे हजूर के यहाँ आप देखते हैं हर एक समाज के भाई जाते थे, वेस्ट से भी लोग जाते थे, मुसलमान भाई भी जाते थे, हिंदू सिख सब भाई। कौन लोग जिनको परमारस की चाह थी, बाकी नहीं। वो जिसने पढ़ना ही नहीं माफ करना, उसको क्या जरूरत पड़ी। एक ने गाना सीखना है वो तानसेन की जूतियां झाड़ेगा, जिन्हें गाना सीखना नहीं वो तानसेन उसकी जूतियां चाहता फिर तो क्या है। तो सब महात्माओं को तकरीबन आदर्श वही रहा। इसके बाद कल वो जो शब्द हम पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा आगे दो चार करिए और कर दी जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे महापुरुष हमें देते क्या।